ओम शांति, ओम शांति। सभी अपने आप को बहुत रिलैक्स फील कर रहे हैं, हाँ, क्योंकि देखिए भगवान का घर एक ज्ञान सरोवर में आप सभी उपस्थित हैं, जहाँ पर सभी के आने की इच्छा होती है। आप ऐसे पवित्र शुद्ध परमात्मा की छत्र छाया में आप सभी विराजमान हैं। आपके इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत फिर से इवनिंग सेशन में बहुत बहुत वेलकम है। एक बार जोरदार तालियों से सब अपने आप को एकदम रिलैक्स भी कीजिए और अपना वेलकम भी कीजिए। साथ साथ में हम अपने मंचासीन का भी बहुत बहुत करतल ध्वनि से उनका भी हम वेलकम करते हैं। और अभी मैं सबसे पहले हमारे भारतीय संस्कृति में एक रस्म है कि हम जो भी हमारे मंचासीन होते हैं हम उन सभी का वेलकम करते हैं। तो मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों से अनुरोध करती हूं कि हमारे जो भी मंचासीन है आप सभी उनका वेलकम करें। हमारे बीच में जब तक वो वेलकम हो, हम सभी हमारे अभी का जो मेन टॉपिक है वो है बैलेंसिंग मेंटल एंड फिजिकल फिटनेस। आज ये बहुत जरूरी है ना, आप स्पोर्ट्समैन के लिए तो बहुत जरूरी है। जोरदार तालियों से भी हम सभी दीदी का, विजय दीदी को बुके के द्वारा और बैचेस के द्वारा उनका वेलकम किया जा रहा है। आप अपनी ताली जोरदार बजाते रहिए तो जिसमें आपके अंदर भी वो एनर्जी बनी रहे। और हमारे अतिथियों का भी स्वागत, दिनेश भाई जी को बुके के द्वारा और उनका बैचेस के द्वारा उनका भी वेलकम किया जा रहा है। और अभी हमारे सामने कुलदीप सिंह मलिक जी भी हमारे सामने उपस्थित हैं, हम उनका भी बैच के बुके के द्वारा और बैचेस के द्वारा उनका भी वेलकम कर रहे हैं। बहने हमारे इस सेशन में जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, आज का सेशन अभी इवनिंग का बैलेंसिंग मेंटल एंड फिजिकल फिटनेस। अभी हमारे इस टॉपिक को हमारे बीच में आज के जो मेन गेस्ट हैं हमारे इस प्रोग्राम के वह हैं दिनेश भाई जी। आप दिल्ली करोल बाग से हैं। अभी हमारे सामने इस टॉपिक को आप रखेंगे बैलेंसिंग मेंटल एंड फिजिकल फिटनेस, क्योंकि आजकल ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना हम स्पोर्ट्स में अपने खेल में अच्छे से हम नहीं कर पाते। तो इसके लिए बहुत जरूरी है ये हम कैसे अपने को शरीर और मन को दोनों को तंदुरुस्त करें। तो उसके लिए हमारे बीच में हमारे दिनेश भाई हैं जो हमको इस टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे कि कैसे हम इसको बढ़ाएं, क्योंकि इसके बिना तो हमारे खेल में भी और जीवन में भी बहुत मुश्किल है। इसी के कारण आज हम अपने जीवन में बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण हम अपने जीवन में भी कभी कभी हम हार खा लेते हैं। तो उसको हम कैसे बैलेंस करें वो हम अभी दिनेश भाई जी से सुनेंगे। तो उनका मैं थोड़ा सा ब्रीफ में इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे। आप बैचलर ऑफ आर्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं, आपने फिजिकल एजुकेशन में अमरावती यूनिवर्सिटी से भी आपने बैचलर किया हुआ है। आप फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं, आप फिजिकल एजुकेशन नागपुर यूनिवर्सिटी से आपने किया है, बैचलर डिग्री ली है। मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन नागपुर यूनिवर्सिटी से, एमएससी काउंसलिंग एंड स्पिरिचुअल हेल्थ अनामलाई यूनिवर्सिटी से, आपने एमएससी योगा एंड वैल्यू एजुकेशन वो भी आपने अनामलाई यूनिवर्सिटी से किया है। आप एमफिल फिजिकल एजुकेशन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से हैं, पीएचडी योगा फिजिकल एजुकेशन LNIPDU ग्वालियर से किया है। आपने डिप्लोमा बहुत सारे सर्टिफिकेट्स भी लिए हैं, डिप्लोमा इन योगा जम्मू एंड कश्मीर से लिया है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड सोशल वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन दिल्ली इग्नू से किया है, पीजी डिप्लोमा इन काउंसलिंग एंड स्पिरिचुअल हेल्थ अन्नामलाई यूनिवर्सिटी से किया है, सर्टिफिकेट इन योगा बरिहान महाराष्ट्र योगा परिषद अमरावती यूनिवर्सिटी से, सर्टिफिकेट इन फूड एंड न्यूट्रिशन इग्नू दिल्ली से। आपके बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज में आप बहुत एक्टिव हैं। आप 25 वर्षों से योगा एंड फिजिकल एजुकेशन ट्रेनर हैं। आप रेगुलर फैकल्टी ऑफ एमएससी योगा एंड वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम्स ऑफ अन्नामलाई यूनिवर्सिटी इन कोलैबोरेशन विद REERF, हमारे इस एक मिनी एजुकेशन सोसाइटी है जिसका राजू का एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन है, उसमें भी आपने किया है। प्रोफेसर कम रिसर्च सुपरवाइजर हैं मणिपुर यूनिवर्सिटी एंड सेंटर फॉर एकेडमिक रिसर्च प्रैक्टिसिंग योगा मेडिटेशनम मोर देन 35 इयर्स इन एसोसिएशन विद बीके सेंटर दिल्ली से एंड अटेंडेंस वेरियस नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज रिलेटेड टू योगा फिजिकल एजुकेशन एंड साइकोलॉजी इन हरिद्वार सागर दिल्ली ग्वालियर कुरुक्षेत्र रोहतक बहुत सारे उसमें किया है एंड इम्पार्टिंग वेरियस सर्विसेज एंड क्लासेस फॉर स्पोर्ट्स योगा न्यूट्रिशन एंड फिटनेस इन चिल्ड्रन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैंप्स फॉर RERF फॉर मोर देन 25 इयर्स बहुत सारी आपने बहुत एक्टिविटीज में भाग लिया है तो हम जोरदार ताली से भाई साहब का धन्यवाद करते हैं वेलकम भाई साहब से अभी मैं माइक देती हूँ कि वो हमारे इस पर प्रकाश डालेंगे ओम शांति
ओम शांति चलिए आज विषय है हमारा कि कैसे मन और शरीर की फिटनेस को बैलेंस रखें ज्यादातर होता क्या है कि अगर हम फिजिकल की प्रैक्टिस पे हैं तो फिजिकल में ही इन्वॉल्वमेंट जब शुरू होता है तो मन वाले पार्ट को भूल जाते हैं और जब बड़ा जोर लगा के कोई कहते हैं कि भी मेडिटेशन करो या माइंड की प्रैक्टिस करो तो फिर उस पे लगना शुरू होते हैं लेकिन जब मन वाली प्रैक्टिस पे लगना शुरू होते हैं तो माइंड बहुत ज्यादा फिकल है 20 मिनट से ज्यादा टिकता नहीं कहीं तो फिर लगता है कि यार इससे अच्छा तो प्रैक्टिस ही कर लेते हैं अपना प्रैक्टिस करते तो ज्यादा कहीं ना कहीं कोई स्किल निखर के आती हमारा कहीं ना कहीं जो खेल का कौशल्य था वो उभरता है और हम उसमें अपना परफेक्शन कर सकते थे लेकिन एक चीज बड़ी गहराई से समझ लीजिए कि हम कितना भी प्रैक्टिस करें अगर मन हमारा उसके साथ एक रिदम में नहीं आया है मन ने अगर उसको अंदर से उस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया है तो हमारा परफेक्शन नहीं हो पाता एक ही क्रिया एक ही स्किल हमारे कोचेज हमारे गुरुजन 10 लोगों को सिखाते हैं लेकिन एक या दो बच्चा उसमें पूरी तरह से परफेक्ट हो जाता है और दो चार ऐसे होते हैं कि जिनमें वो स्किल समझ में नहीं आती पकड़ में नहीं आती 10 दिन प्रैक्टिस कराओ 15 दिन प्रैक्टिस कराओ 20 दिन प्रैक्टिस कराओ लेकिन बहुत ज्यादा समझ में नहीं आती क्योंकि उसको गहराई से आत्मसात नहीं किया है एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल महाभारत में जो सुनते हैं कि युधिष्ठिर जब अपने गुरु के पास पढ़ने के लिए जाते थे तो गुरु जी ने एक छोटा सा लेसन दिया कि सदा सत्य बोलो नेक्स्ट डे सभी राजकुमार आए और सबको पूछा कि भाई आपने लेसन याद कर लिया सबने बोला हाँ कर लिया और युधिष्ठिर का जवाब था नहीं दूसरे दिन पूछा तब भी युधिष्ठिर का जवाब था नहीं 4-5 दिन हो गए गुरु जी को लगा कि फिर मेरे सिखाने में कमी है या इसकी समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी छोटी सी बात कि सदा सत्य बोलो इसमें क्या है तो जिस तरह से पहले आपको पता है गुरुकुल में जब पढ़ाई होती थी तो पनिशमेंट मिलता था अच्छा खासा पनिशमेंट मिलता था और पनिशमेंट देते देते गुरुजी थक गए और एक दिन लास्ट में जब बहुत बुरी तरह से थक गए तो उन्होंने पूछा भाई इतनी छोटी सी बात युधिष्ठिर तुम्हारी समझ में नहीं आती कि सदा सत्य बोलो उस दिन भी युधिष्ठिर ने मना किया लेकिन नेक्स्ट डे युधिष्ठिर ने बोला कि गुरुजी आज मुझे आपका लेसन समझ में आ गया मीन्स कि जीवन में उसकी धारणा हो गई और पूरे महाभारत में सिर्फ एक ही जगह दिखाते हैं कि युधिष्ठिर ने एक ही जगह सत्य हाँ बोला लेकिन उसको थोड़ा सा चीटिंग किया मीन्स सत्य को घुमा के बोला कि अश्वत्थामा हतो नरो नैव कुंजरो मीन्स सत्य तो बोला लेकिन उसको घुमा के बोला इसका मतलब कि जो धारणाएं हैं जीवन में वो बहुत कठिन है चीजों को याद करना आपने जो लेसन किसी को पढ़ाया है आपने जो थ्योरी किसी को सिखाई है बड़ी जल्दी से आत्मसात हो जाती है, बड़ी जल्दी से हमारी पकड़ में आ जाती है। लेकिन उस थ्योरी के पीछे उसका जीस्ट क्या है, उसकी गहराई क्या है, अगर वो आपके जिस शिष्य ने पकड़ी, आप देखेंगे वो शिष्य आगे कामयाब होता चला जाता है। जो भी आप कोचेज बैठे हैं, मैं समझता हूं मेरी बात से आप एग्री करते होंगे, क्योंकि सभी लोग नहीं पकड़ पाते, लेकिन यकीनन जो आपकी बात बड़ी गहराई से सुन रहा है, विश्वास कर रहा है, वो जरूर उसमें आगे बढ़ पाएगा। इसके बाद महर्षि पतंजलि ने बहुत बड़ा अष्टांग योग, पूरा अपना योग का शास्त्र दिया, जिनको योग का भीष्म पितामह, योग का जनक माना जाता है। और उन्होंने आप देखें पूरे योग में आसन और प्राणायाम को अगर छोड़ दें तो बाकी 6 पार्ट्स, यम, नियम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये किससे रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, बॉडी से या मन से? मन से। इट मींस कि मन की ताकत कितनी है, ये हमारे महर्षि बहुत पहले से जानते थे, और इसलिए उन्होंने मन की एकाग्रता के ऊपर आपको बहुत ज्यादा चीजों को बताया है। योग में तो सिंपल जैसे त्राटक की एक क्रिया बताते हैं कि आपने एकाग्रता होकर देखना है, और वो त्राटक का अभ्यास भी कराते हैं। हम लोग मैक्सिमम लोग जिन्होंने भी योगा किया होगा, फिजिकल एजुकेशन किया होगा, आप लोग हैं ही उस फील्ड से, तो मैं समझता हूं त्राटक के बारे में सबने सुना होगा, पढ़ा भी होगा। अच्छा, मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूं, आप में से किसी ने 10 मिनट तक त्राटक में एक टक प्रैक्टिस किया है? किसी एक ने? जी, गुड, आप में से एक है, बहुत अच्छी बात है। क्या होता है जब 10 मिनट हमारी एकाग्रता शुरू होती है? अब देखिए थ्योरी सबने पढ़ी, सबने एग्जामिनेशन दिया, सबने वो डिग्री हासिल की, सबने आगे उस चीज को जान लिया, लेकिन प्रैक्टिस, अगर 5 मिनट भी मन एकाग्र शुरू होता है, उस एकाग्रता से हमारी इतनी जबरदस्त एनर्जी का फ्लो, एनर्जी का फ्लो आना शुरू होता है कि साइंस वहां जाकर फेल हो जाती है, ये जज नहीं कर पाती कि ये फिनोमिना किस तरह से काम कर रहा है। एक छोटा सा एग्जांपल, वर्ल्ड के बहुत बड़े एक साइकोथेरेपिस्ट हैं, यूरी गेलर, नाम सुना है किसी ने? यूरी गेलर नाम सुना है? हाँ, कुछ लोगों ने नाम सुना है। एक बार उन्होंने अपना एक शो दिया, उस शो में उन्होंने कंसंट्रेशन पावर, आपके मन की शक्ति को दर्शाया कि कैसे वो काम करती है। पूरे साइंटिस्ट सामने जमा हैं, सभी तरह के जितने भी फ्रॉड हो सकते हैं उसके लिए सब मशीनें और डिटेक्टर लगाए हुए हैं कि कहीं कोई चीटिंग का चांस नहीं है। और उन साइंटिस्ट ने अपने हाथ में इस तरह से सरसों के दाने लिए और सिर्फ 3 से 4 मिनट उनको ऐसी दृष्टि दी, मन को एकाग्र किया, और उन दानों से धीरे धीरे अंकुर आना शुरू हो गया, जिसको लगभग 10-15 दिन लगते हैं या महीने भी लग सकते हैं, कि चीज को आप जमीन में डालेंगे तो अंकुर आने में टाइम लगता है। फिर साइंटिस्ट ने देखा कि ये होता क्या है, रीजन क्या है, कि जब हमारा मन बहुत ज्यादा भाग रहा है तो उसकी एनर्जी कंसंट्रेट नहीं है, उसमें कोई बहुत ज्यादा पावर नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे मन एकाग्र होता है वो एनर्जी का फ्लो इतना ज्यादा डेंस होता जाता है कि ऐसा गहराई से लगता है कि पूरा व्हाइट व्हाइट जैसा वो एनर्जी वहां इकट्ठी हो गई है और वो वर्क करती है, वो काम करती है। इसलिए जितना ज्यादा हमारा मन और शरीर एक रिदम में आता है, एक साथ काम करना शुरू करता है, तो बहुत सारी चीजें हमारी सफल होना शुरू होती हैं। और फिजिकल एजुकेशन में, स्पोर्ट्स में तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां प्रैक्टिकल है सारी चीजों का, थ्योरी कम है। थ्योरी तो आपने पढ़ी एक बार, हो गई पूरी, लेकिन अभी प्रैक्टिकल है। कोचिज के लिए चैलेंज है कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को सिखाना जिनका ध्यान लगता ही नहीं है, जो सिर्फ जबरदस्ती आए हैं, उनको सिखाना बड़ा मुसीबत का काम है। लेकिन धन्य है हमारे कोचिज, हमारे गुरुजन, जो ऐसे बच्चों को भी कामयाब करा जाते हैं। कितना वो मेहनत करते हैं, कितना उसके पीछे उनका एफर्ट होता है, ये देखने वाली चीज है। चलिए, और वैसे भी आज हैवी टीचर्स डे ना, तो हमारे गुरुजनों के लिए एक बार जोरदार तालियां और उन सभी को प्रणाम जी। चलिए, छोटा सा हम टॉपिक के ऊपर डिस्कशन और बढ़ाते हैं आगे। अब है सिंपल सा हमने लिए है, छोटी छोटी चीजें ली हैं, बड़ी सिंपल, कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारी फिटनेस को इफेक्ट करते हैं। तो जनरल जो हमारे फैक्टर्स हैं, पहला है जेनेटिक, और जेनेटिक के लिए कहा जाता है कि जेनेटिक फैक्टर को चेंज कर पाना बड़ा मुश्किल है। बहुत ही रेयर केसेस में कुछ लोगों ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी आउट ऑफ द बॉक्स जाके जेनेटिक लेवल पे चेंजेस किए हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा ना तो प्रैक्टिस में है और ना इजीली संभव है, क्योंकि बहुत ज्यादा वो चीज मेहनत मांगती। दूसरा है कि एनवायरमेंट की वजह से अगर कुछ हमारे शरीर के अंदर कुछ कमियां आती हैं, हमारी फिटनेस में कुछ कमी आती है, तो उसको भी तोड़ पाना मुश्किल होता है, क्योंकि उसी एटमोस्फेयर में आपको रहना है। समझो आप नमी वाले इलाके में रहते हैं और लंग्स की कोई दिक्कत है और प्राणायाम की प्रैक्टिस आपको करनी है, क्योंकि लंग्स क्योंकि वहां इफेक्टिव होते हैं, वो जो नमी है, वो जो ह्यूमिडिटी है, वो लंग्स को इफेक्ट डालती है, तो उन चीजों को तोड़ पाना मुश्किल होता है। उसके बाद है एजुकेशन लेवल, कि जितना हमारा अच्छा एजुकेशन लेवल है, हमारी चीज के ऊपर पकड़ है, मीन्स कि जो हम करने जा रहे हैं, जो काम करने जा रहे हैं, उसकी हमें अच्छे से शिक्षा है, तो हम अपना फिटनेस को अच्छा रख पाते हैं। और दूसरा है इकोनॉमिक, कि अगर हमारा एक स्तर उस लेवल पे नहीं है कि जहां वो फैसिलिटीज, जहां वो सुख सुविधाएं हम अपनी फिटनेस के लिए रख सकते हैं और वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तब भी कई बार आप देखेंगे कि फिटनेस में हमारे कमी आती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारी जो फिजिकल फिटनेस है, हमारे दो पार्ट हैं, फिजिकल फिटनेस है और एक मेंटल फिटनेस है। तो फिजिकल फिटनेस के लिए सिंपली क्या चीजें होती हैं जो इफेक्ट डालती हैं? सबसे पहले है कि सभी लोग हैं, बर्थ के बाद से हमारा जन्म होता है, कहते हैं कि 6 स्टेजेस से हर व्यक्ति गुजरता है, हर वस्तु गुजरती है, कहते हैं जायते अस्थि वर्धते परिवर्धते क्षीयते और नश्यत, क्योंकि कोई भी चीज है अपने वजूद में आती है, बढ़ती है, परिवर्तित होती है, उसमें कुछ चेंजेस आती हैं और लास्ट में वो अपने जीवन को संपूर्ण करती है, अपनी संपूर्णता को प्राप्त करती है, मीन्स कि नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इसी तरह से अगर शरीर में कोई डिजीज हमारे बचपन से अगर आ गई है, कोई पेरेंटल रीजन से आई है, हेरिडिटी की वजह से आई है, तो उन डिजीज को भी तोड़ पाना मुश्किल होता है। लेकिन जो एक्वायर्ड है, जैसे वक्त के हिसाब से कुछ चीजें फैलती हैं, कुछ पेंडेमिक फैलते हैं या कुछ इस तरह की बीमारियां फैलती हैं, उनका कंट्रोल कर पाना संभव हो पाता है। दूसरा है एक्सीडेंटल और ट्रामा। कई बार कुछ इस तरह के हादसे होते हैं कि जिनके बाद बॉडी काम करना उतने फोर्स पे काम नहीं कर पाती, उस ट्रामा को और उस एक्सीडेंटल सेटबैक को तोड़ पाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये जैसे कि कल हमने हमारे बलवान सिंह जी से सुना था, उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से वो एक्सीडेंट के बाद भी फिजियोथेरेपी से उसको उन्होंने ठीक किया, तो वो एक बहुत ही गजब की चीज है। मीन्स कि इन चीजों को तोड़ पाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कुछ ऐसे कोचिज, कुछ ऐसे गुरुजन जिन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य ही इस चीज को बना लिया है कि हमें कुछ काम करना है, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करना है, और वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो काम आप जब करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट निकल के आता है। उसके बाद है स्पोर्ट्स इंजरी। ये आप देखेंगे कि जब बहुत ज्यादा आपको लगता है कि प्रैक्टिस का टाइम आपका नॉर्मल रहता है, लेकिन जब कंपटीशंस आते हैं तो हमारा प्रैक्टिस का टाइम क्या होता है, धीरे धीरे हम बढ़ाना शुरू करते हैं, और पहले अगर हमने प्रैक्टिस नहीं की है और थोड़ा सा एंग्जाइटी शुरू हो गई, समझो रेसलिंग में आप जा रहे हो कि लग रहा है भी सामने वाला जो पहलवान है बहुत ज्यादा पावरफुल है और हम उसको हराने में उतना सक्षम नहीं है, सशक्त नहीं है, तो हमने अपनी प्रैक्टिस बढ़ा दी कि रोज हम 50 डिप्स लगाते थे या 500 लगाते थे, हमने डेली 1000 शुरू कर दी। अब होगा क्या, क्या होगा रिजल्ट, क्या होगा इंजरी। और ये जो स्पोर्ट्स इंजरी है आपको पता है कि बड़ा लंबा टाइम खींचती है, क्योंकि लिगामेंट्स और टेंडेंट्स की एक लिमिट है हमारे, किसी भी व्यक्ति के ले लो, उसकी अपनी बॉडी की जो भी कैपेसिटी है, जो इंटेंसिटी है, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि कितने उसके लिगामेंट्स फ्लेक्सिबल हैं, कितना उसकी एजिलिटी है ना, कितना हम उसको चीजों को यूज कर सकते हैं, कितना उसके मसल्स यूज कर सकते हैं, कितना उसके जॉइंट्स को हम यूज कर सकते हैं। तो अगर स्पोर्ट्स इंजरी आती है तो वो भी हमारी फिटनेस को इफेक्ट डालती है, तो कोशिश करें कि वो स्पोर्ट्स इंजरी हम अवॉइड कर सकें। और नेक्स्ट है डिफॉर्मिटी। समझो कोई इस तरह की लाइफ में कुछ दुर्घटना हुई और एक परमानेंट डिफॉर्मिटी अगर किसी पोर्शन पे आ गई, किसी पार्ट पे आ गई, बॉडी के किसी भी हिस्से पे एक परमानेंट डिफॉर्मिटी जब आती है तो बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो सारा हमारी फिजिकल फिटनेस को इफेक्ट डालते हैं। और ये बड़ी गहरी चीजें हैं, जो लोग भी गहरी प्रैक्टिस करते हैं, जो लोग अपने लक्ष्य के बिल्कुल पीछे पड़े हुए हैं और उनको लगता है कि हमें कुछ ना कुछ करना है, क्योंकि वो मेहनत भी ज्यादा करेंगे, लोगों से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करेंगे, जब लोग उठ के अखाड़े में आना शुरू करेंगे वो उससे पहले अपना वर्कआउट करके आराम से बैठे हुए होंगे, क्योंकि उन्हें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है। तो वहां स्पोर्ट्स इंजरी और डिफॉर्मिटी, इन दो चीजों का ज्यादा खतरा होता है। तो ये चीजें हमारी फिजिकल फिटनेस को अच्छे से इफेक्ट डालती हैं। नेक्स्ट है फिर एक ये सर्वे है कि कितने लोगों को मेडिकल हेल्प चाहिए। आप देखें जरा, सामने दिख रहा होगा अच्छे से, ये एक स्टडी है, एक स्टडी की और उसमें देखा कि कितने लोगों को मेडिकल हेल्प चाहिए। हाँ, इसमें आप देखेंगे डायबिटीज, देखिए कितने लोगों का है परसेंटेज, ओबेसिटी देखिए कितने लोगों को है। वो कहते हैं कि हर 10 में से समझिए कि 6 लोग तो इस तरह से हैं, उनको मेडिकल हेल्प चाहिए, उनकी फिटनेस है ही नहीं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। और मेंटल फिटनेस के लिए हमारे क्या फैक्टर्स होते हैं, जो हो सकते हैं, जो इफेक्ट डालते हैं, तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो साइकोलॉजिकल प्रेशर्स हैं हमारे ऊपर ना, कई बार खेल के दौरान होते हैं, कई बार खेल से पहले होते हैं, कि क्या हमारा सिलेक्शन ही हो पाएगा। पहले तो सिलेक्शन वाला लेवल है ना, सिलेक्शन लेवल से पहले प्रेशर होता है कि भाई मैं टीम में सेलेक्ट भी हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, और सेलेक्ट होने के बाद कि मेरी परफॉर्मेंस ऐसी रहेगी कि मैं रुक पाऊंगा थोड़ी देर, मैं चल पाऊंगा टीम में। तो वो जो साइकोलॉजिकल प्रेशर्स हैं वो किसी भी तरह से हो सकते हैं, स्ट्रेस भी हो सकता है, एंग्जाइटी भी हो सकती है, डिप्रेशन भी हो सकता है किसी फेज पे। तो जो भी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं हमारी फिटनेस के ऊपर गहरा इफेक्ट डालते हैं। नेक्स्ट है रिलेशनशिप्स। ये आप जैसा कि आजकल देख ही रहे हैं कि रिलेशंस जो है हमारे उसमें कड़वाहट ज्यादा भरती जा रही है, फैमिलीज टूट रही हैं, डाइवोर्स केसेस पिटीशंस बहुत ज्यादा कोर्ट में फाइल होते हैं, बहुत सारी वो चीजें सामने आती हैं, तो वो भी हमारी हेल्थ को, जो मेंटल हेल्थ है, कहीं ना कहीं सेहत हमारी अच्छी होने के बावजूद भी अगर रिलेशनशिप्स हमारे अच्छे नहीं है, फैमिली कंडीशंस हमारी अच्छी नहीं है, तो कहीं ना कहीं इफेक्ट आता है। और हम देखते हैं कि एक बहुत अच्छा जो प्लेयर था, जिसकी परफॉर्मेंस 6 महीने पहले बहुत अच्छी थी, 6 महीने बाद जब उससे मिलते हैं तो देखते हैं कि परफॉर्मेंस गिरती जा रही है। रीजन समझ में नहीं आ रहा, हम उसको कहते हैं प्रैक्टिस ज्यादा कर, ये स्किल सीख, ये कर, वो कर, लेकिन गहराई से जब देखें, थोड़ा उसके नजदीक बैठें, उससे थोड़ा सा बात करने की कोशिश करें, उसके फैमिली सर्कमस्टांसिस की अगर बातें करें और उसको पता करें, तो पता पड़ता है कि कहीं ना कहीं फैमिली से उसको डिस्टर्बेंस है। मैं एक ऐसे स्टूडेंट्स की बात आपको बताता हूं कि एक बार एक बहुत अच्छा एथलीट था, दिल्ली की बात मैं कर रहा हूं आपको, बहुत अच्छा एथलीट था और पक्का था हमें कि ये जोन में गोल्ड मेडल लेके आएगा। बड़ी अच्छी उसकी स्पीड वगैरह थी, बड़ा अच्छा उसको ट्रेनिंग दिया हुआ था, उसको जो संस्था थी वही उसको खिला पिला के उसको अच्छे से तैयार करती थी। लेकिन जब लगभग 15 दिन कंपटीशन के बचे थे तो पता लगा कि वो प्रैक्टिस के लिए आ ही नहीं रहे, और नहीं आ रहे तो बड़ा, अब समझेंगे कि जो भी कोचिज होते हैं और उनका एक अच्छा स्टूडेंट अगर नहीं आ रहा है तो उनको ज्यादा दुख होता है। तो कई लोगों से पूछा, कई लोगों से पता किया, तो उसके जो बड़ा क्लोज फ्रेंड थे उन्होंने बताया कि सर वो आजकल यहां पास में खुदाई चल रही है और वो उसमें मजदूरी कर रहे हैं क्योंकि उसके पास घर में पैसे नहीं है। स्थिति कैसे बदलती है, और हम लोगों ने वहीं से पता कराया, उसके दोस्तों से उसको बुलवाया, उसके लिए पैसों का अरेंजमेंट किया और उसने फिर जोन में गोल्ड मेडल लिया। बहुत छोटी चीज थी उसके लिए गोल्ड मेडल की, मीन्स कि उसका टाइमिंग इतना अच्छा था कि हमें पक्का पता था कि इसको तोड़ पाना मुश्किल है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजें अगर फैमिली से कहीं दिक्कत आ रही है तो वो हमारी हेल्थ को कहीं ना कहीं इफेक्ट डालती हैं। फिर है एम्प्लॉयमेंट, कि समझो आप बड़े अच्छे बन गए हैं, प्लेयर भी अच्छे बन गए हैं और एक अच्छी जॉब अगर नहीं मिल पाती है, फिर ज्यादातर क्या होता है, आप कहीं गांव खेड़े में जाइए तो क्या बोलते हैं कि बस सारी उम्र खेलता ही रहा, नौकरी भी नहीं मिली, पैसा कमाना जानता ही नहीं है, है ना। तो अगर एम्प्लॉयमेंट अरेंजमेंट नहीं हो पाती है और उसके लेवल की नहीं हो पाती है, समझो बहुत अच्छा खिलाड़ी है तो वो छोटी मोटी जॉब तो नहीं करेगा ना, उसके हिसाब से जॉब चाहिए, उसके हिसाब से एम्प्लॉयमेंट उसको चाहिए। आज से 20-30 साल पहले जाओ तो बहुत ज्यादा प्लेयर्स की इतना केयर नहीं होती थी, लेकिन अभी हमारी गवर्नमेंट भी और हमारे जो भी पीएम साहब हैं अच्छे से उन चीजों को ध्यान में रखते हैं और अभी हमारे प्लेयर्स का स्टैंडर्ड अच्छे से बढ़ता जा रहा है। और नेक्स्ट है ड्रग्स और डोपिंग, ये दो चीजें आप देखेंगे कि जब प्लेयर को लगता है कि वो अपनी परफॉर्मेंस को आगे नहीं बढ़ा पा रहा है तो धीरे धीरे छोटी छोटी स्टेजेस पे ड्रग्स लेना शुरू करते हैं। मैं आपको स्कूल जर्नल्स की बात बताता हूं, मॉडर्न स्कूल बाराखंबा में एथलेटिक्स चल रहा था और एक बच्चा 11th क्लास का, और वो जैसी रनिंग कर रहे हैं उसकी आंखें एकदम से लाल हैं और गिरने को तैयार है, वो दो बार जैसे ही उसको स्टार्ट दिया है दोनों बार वो जल्दी दौड़ा है, तो तीसरी बार जो कोचेज हैं उनको थोड़ा सा शक हुआ, उसको अलग बुलाया तो पता लगा कि अभी अभी इंजेक्शन लेके आए, ड्रग्स लेके आए, 11th क्लास की हरियाल है। तो ड्रग्स और डोपिंग एक ऐसा सिस्टम के खिलाफ ना, ऐसा एक समझिए कि खतरनाक टूल बन गया है, जिनको ड्रग्स बेचनी है उनके लिए तो स्पोर्ट्समैन एक बहुत अच्छे जरिए हैं, वो ढूंढते हैं इस तरह के स्टूडेंट्स कि जल्दी से कोई आता है उनका बिजनेस चलना है। तो ड्रग्स और डोपिंग के चक्कर में भी अगर हमारे प्लेयर्स पढ़ते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है उनकी फिटनेस को बरकरार रखना। चलिए नेक्स्ट है हमारा कि कैसे, अब ये चीजें तो हैं ही सारी और कैसे हम उसको तोड़ सकते हैं, इस रिदम को इसको कैसे डीकंडीशनड कर सकते हैं, उसमें है कि हेल्दी लाइफस्टाइल अगर हम फॉलो करते हैं तो इन चीजों को तोड़ पाएंगे। और आज सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि हमारा लाइफस्टाइल हेल्दी बचा ही नहीं है, ना हमारे सोने का टाइम है, ना सुबह उठने का टाइम है, ना हमारा खाने पीने का कोई सिस्टम है। उस वजह से सुबह मॉर्निंग एक्सरसाइज के लिए अगर देखें, एक रिसर्च थी, एक थीसिस थी पीएचडी की, उसमें था कि दिल्ली के लगभग उसने 500 पार्क लिए थे स्टडी में, और उसने देखा कि 500 पार्क में यंग जनरेशन जो एक्सरसाइज करने आती है वो सिर्फ 2% थी। 98% लोग जो पार्क में घूमने आ रहे हैं या एक्सरसाइज करने आ रहे हैं वो बुजुर्ग लोग थे। मीन्स कि बच्चों को उस एज में जहां वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, जहां अपनी फिटनेस अच्छा रख सकते हैं, वहां उनको एक्सरसाइज करने की फुर्सत ही नहीं है, उनको शौक ही नहीं है उस चीज का। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डाइट और न्यूट्रिशन। बहुत ही, अब देखेंगे प्लेयर्स के लिए तो डाइट अलग से अरेंज की जाती है, प्रोटीन उनको बढ़ाए जाते हैं, जो भी उनको डाइट चाहिए उस हिसाब से दी जाती है, लेकिन वो डाइट अगर उनका बाकी खान पान सही नहीं है तो वो अच्छे से बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाती। और दूसरा कि अगर उनका लाइफस्टाइल सिस्टम में नहीं है तो जो हैवी डाइट है वो बॉडी में डाइजेस्ट होने की बजाय वेस्ट में जाती है, बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो पाती। ज्यादातर आप देखेंगे अगर स्टडी कुछ इस तरह की स्टडीज हैं कि जिम में अगर जाते हैं तो जो कोचेज हैं उनको फीस के साथ साथ पहले 3-3 डिब्बे पकड़ा देते हैं प्रोटीन एक्स के, जो प्रोटीन वाले सिस्टम होते हैं, जो सप्लीमेंट्स होते हैं उनके 3-3-4-4 डिब्बे दे देते हैं कि जिम में तो जितनी मेहनत आपको करनी है करो, लेकिन जिम से कुछ नहीं होगा जब तक ये डिब्बे नहीं लोगे, जब तक ये सप्लीमेंट्स आप नहीं लोगे तब तक बॉडी पे इफेक्ट नहीं आएगा। और यंग बच्चे, छोटे छोटे बच्चे वो सप्लीमेंट्स लेना शुरू करते हैं, और आप सब लोग फिजिकल एजुकेटर्स हैं, आप जानते हैं कि जितना भी एक्स्ट्रा प्रोटीन है उसको पचाने के लिए हमारे लीवर, किडनी और जो भी ऑर्गन्स हैं उनकी तो एफिशिएंसी वही है, कितना उस पर लोड डालेंगे, तो वहां वो चीजें फिर नुकसान करती हैं। नेक्स्ट है रेस्ट और स्लीप। जैसे कि जगवीर भाई ने भी आपको बताया कि हमारी नींद अगर अच्छी है, रेस्ट हमारा अच्छा है, तो हमारा शरीर सुबह फ्रेश उठता है, हम रिफ्रेश महसूस करते हैं। और नेक्स्ट है रिक्रिएशनल स्पोर्ट्स। अगर हमारी लाइफ में कुछ इस तरह के स्पोर्ट्स जो थोड़ा सा रिक्रिएशन देते हैं, अगर हम स्पोर्ट्स की तरफ जाएं, आज की जो एक बहुत बड़ी व्यथा है कि हमारा ज्यादातर टाइम मोबाइल पे स्पोर्ट्स खेलने में चल रहे हैं, और वो मोबाइल वाला स्पोर्ट्स हमारी सारी एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं। अगर छोटे छोटे रिक्रिएशनल गेम्स की तरफ जाएं, रिक्रिएशनल स्पोर्ट्स की तरफ जाएं, तो हम अच्छे से अपनी फिटनेस मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट अब क्या है बैलेंस फॉर, इसलिए हम जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनके लिए हम क्या कुछ छोटी मोटी चीजें हैं जो ध्यान में रख सकते हैं। जैसे सबसे पहले दिया है कि सेट योर गोल। सबसे पहले जो भी हमारे पास प्लेयर्स हैं उनसे ये पूछा जाए कि भाई, ज्यादातर जब हम देखते हैं कि सिलेक्शन होता है, बच्चों को बोलते हैं कि भाई आप किस गेम में जाना चाहते हो, कि सर मैं तो बैडमिंटन खेलूंगा, पापा ने घर में रैकेट ला के रखा हुआ है। बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है लेकिन पापा ने रखा हुआ है, ठीक है। कई बार अप्रोचेज आती हैं कि सर इसको ना इस गेम के लिए एडमिट करा दीजिए कॉलेज में, और हम इसको चाहते हैं कि ये क्रिकेटर ही बने, ठीक है। बच्चे का इंटरेस्ट क्रिकेट में है नहीं, वो स्विमिंग करता है या किसी और गेम में है। तो यहां जब तक हमने उसके इंटरेस्ट का गेम नहीं पकड़ा है तब तक वो अपना गोल सेट नहीं कर पाएगा। मीन्स जब उसकी मर्जी से स्पोर्ट्स सामने आया है तो दिल से मेहनत करेगा, अपना कुछ ना कुछ गोल भी फिक्स करेगा, और जब गोल सेट होगा तो कुछ ना कुछ अचीवमेंट वहां मिलनी ही मिलनी है। फिर है फोकस विथ डिटर्मिनेशन, कि जब गोल हमारा सेट हो गया है उसके बाद जो हमारा फोकस होना चाहिए पूरी डिटर्मिनेशन के साथ कि हमने ये करना ही है, इस पे आगे बढ़ना ही है, इसमें काम करना ही है, वहां हमारा फोकस फिर पूरी तरह से चाहिए। नेक्स्ट है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी कैसे, विद कोचिज एंड विद प्रैक्टिसेस, कि जो भी हमारे कोचिज हैं, कई बार हम सब समझो कि 3 दिन से एब्सेंट हैं, प्रैक्टिस के लिए नहीं आ रहे, और सर ने पूछा, हमारे गुरुजी ने पूछा कि क्यों नहीं आ रहे हो, कि जी घर में कोई बीमार है, मदर बीमार है, फादर बीमार है, अक्सर बच्चों के ये होते हैं बहाने। तो वहां जब हम हमारे गुरुजनों से ही ईमानदारी नहीं रख पा रहे हैं, तब सीख पाना बड़ा मुश्किल है, बैलेंस रख पाना मुश्किल है। और दूसरा, हमारा जो प्रैक्टिस टाइम है वो कोई हमें देखे या ना देखे, हमें अपनी प्रैक्टिस अपने हिसाब से जितना हमारा शेड्यूल है एटलीस्ट उतना अपने आप उसको फॉलो करना है। और नेक्स्ट पॉइंट है पॉजिटिव एटीट्यूड ड्यूरिंग कॉम्पिटिशंस, कि जो भी कॉम्पिटिशंस के लिए हमें हमारे कोचेज ने आगे किए है उस कॉम्पिटिशन में हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड हो। हम ये नहीं सोचें कि अभी तो हमारी तैयारी पूरी नहीं थी और सर ने हमें बोल दिया कि नहीं आपको इस टीम के साथ जाना है, नहीं आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है, है ना। कई बार होता है कि कोचेज को पता है कि भाई ये नहीं परफॉर्म कर पा रहा है, इसको इस टीम में डाल देते हैं, इस ग्रुप में डाल देते हैं, क्योंकि कोचेज बेटर है, वो जानते हैं। तो अगर हमारा उनके प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड है तो हम यकीनन अपनी इसको बैलेंस, हेल्थ को बैलेंस कर पाएंगे, मेंटल हेल्थ को। और नेक्स्ट है कुछ माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस हैं जो हमारे मन को अच्छे से भरपूर कर सकती हैं, जैसे QRT, DRT, ये रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं, क्विक रिलैक्सेशन टेक्निक्स जो 3-4 मिनट में या 5 मिनट में ही बैठे बैठे कराई जाती है, पूरा उसका एक सिस्टम है। और डीप रिलैक्सेशन टेक्निक्स जो लगभग 40 से 45 मिनट का एक सेशन जाता है। और फिर है NLP मीन्स न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, कि हम अपने ब्रेन को एक प्रोग्रामिंग देना शुरू करते हैं किसी भी गेम या किसी स्पोर्ट्स के लिए कि हमें ये परफॉर्म करना है, ऐसे ऐसे हमारा ब्रेन जब उसको प्रोग्रामिंग मिलती है तो वो उस पर काम करना शुरू करते हैं। नेक्स्ट है विजुअलाइजेशन, जैसे कि आपको गहराई से डॉक्टर जगवीर भाई ने पहले बताया ही है। और नेक्स्ट है रिलैक्सेशन, कि जो भी हमारे किसी प्रैक्टिस ज्यादा रेगुलर जब प्रैक्टिस हम करते हैं तो आप देखेंगे 10-15 दिन के बाद थोड़ा सा बोरिंग शुरू होती है, तो थोड़ा सा उसको रिलैक्स करने के लिए टाइम दें ताकि 1 या 2 दिन के बाद फिर रिलैक्स होके माइंड उस काम पे लग सके। और फिर है इम्पोर्टेंट योगा एंड राज योगा मेडिटेशन, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कि जितना हमारी योगिक प्रैक्टिस है हमारे शरीर को फिट रखती है और जितना राजयोगा वाली प्रैक्टिस है वो हमारे माइंड को अच्छे से फिट रख पाएगी। चलिए कंक्लूड करते हैं कि जो भी राजयोगा हमारी प्रैक्टिस है वो आप यहां सीख भी रहे हैं, 3-4 दिन आप रेगुलर उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, मॉर्निंग से लेकर सारा दिन आपको बीच बीच में भी वो अभ्यास कराए जाएंगे, तो जो राजयोगा प्रैक्टिस है हमारी हीलिंग भी करेगी, हमें शांत भी रखेगी, प्यूरिफाइज भी करेगी, ब्यूटीफाई भी करेगी, माइंड को कंट्रोल भी रखेगी, हमारे बिहेवियर को भी कंट्रोल रखेगी। आप देखेंगे जितने भी लोगों से आप यहां मिलते हैं पूरे कैंपस में, किसी भी व्यक्ति को अपने टेंशन में या कुछ भी आप उससे पूछते हैं तो वो बड़े आराम से बड़े प्यार से आपका जवाब देते हैं, महसूस किया आपने, तो ये इसी राजयोग का कमाल है ना। और फिर है कि हमारी जो फिटनेस है, हमारी थोड़ा सा वोकेबलरी है वो लो नहीं होनी चाहिए, हाई एनर्जी वाली होनी चाहिए, और डिवाइन वैल्यूज को थोड़ा सा फॉलो करें, और जितना हमारे मन वचन और कर्मों में प्योरिटी है उतना ही हम राजयोग भी अच्छे से सीख पाएंगे, और अपने जो भी जीवन का हमारा लक्ष्य है, जो भी स्पोर्ट्स हमने चूज किए हैं उसमें मैक्सिमम अचीवमेंट हम कर पाएंगे। ओम शांति। थैंक यू।
ओम शांति। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई जी का, जो उन्होंने हमको बहुत सहज तरीके से कैसे अपने मन को बैलेंस करना है और शरीर को कैसे फिट रखना है, क्योंकि मन को बैलेंस करने आना भी बहुत जरूरी है और शरीर को फिट भी बहुत जरूरी है रखना। शरीर फिट, मन फिट होगा तो शरीर फिट होगा, शरीर फिट होगा तो मन बैलेंस में रहेगा, तो दोनों चीजों का ही हमको बैलेंस लेकर के चलना है। तो बताया कि हम इस राजयोग मेडिटेशन से हम अपने मन को बैलेंस करते हैं, क्योंकि आज हम देखते हैं मन हमारे अपने हाथ में नहीं है, बैलेंस में नहीं है, वो भागता रहता है। तो ये राजयोग मेडिटेशन एक ऐसा मेडिटेशन है जिसको अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपका मन जो है आपके बैलेंस में, आप उसको बैलेंस कर सकते हैं। और शरीर को फिट रखने के लिए हमको फिजिकल एक्सरसाइज करना भी बहुत जरूरी है, जिससे हमारा शरीर हमेशा फिट रहे। तो इसके लिए हम बहुत बहुत भाई सब का धन्यवाद करते हैं जो उन्होंने हमको बहुत अच्छे तरीके से इसके बारे में बताया। अभी मैं अनुरोध करूँ हमारे कुलदीप सिंह मलिक भाई जी को, आप एक ध्यान मेजर ध्यानचंद अवार्डी हैं और आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं कॉमनवेल्थ गेम एंड एशियन चैंपियनशिप में, और आप वर्ल्ड चैलेंजेस कप में भी आपने गोल्ड मेडल लिया हुआ है। आप इंडियन वुमेन रेसलिंग टीम के चीफ कोच थे, जिस पीरियड में ही साक्षी मलिक जी ने भी ब्रॉन्ज मेडल आपके उसी में कोचिंग में ही जीता था 2016 रियो ओलंपिक्स में, और आपने बहुत सारे और भी जीते हैं 22 मेडल एशियन एंड कॉमनवेल्थ गेम के अंदर। आप एट प्रेजेंट रन्स रेसलिंग एकेडमी विद ओवर 80 गर्ल्स ट्रेनिंग अंडर गाइडेंस फॉर इंडिया एंड ओवरसीज। तो भाई सबसे मैं अनुरोध करती हूँ हमारा जो ये टॉपिक है बैलेंसिंग मेंटल एंड फिजिकल फिटनेस, इस पर आप भी प्रकाश और डालेंगे कि कैसे हम इसको और अपना ग्रोथ करें। मैं कुलदीप मलिक सिंह जी से अनुरोध करती हूँ।
ओम शांति, सभी को मेरा प्रणाम। विजय दीदी और जितने दिनेश जी दीदी हमारी और सामने बैठे हमारे कोची स्पोर्ट्समैन सबको नमस्कार। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आके मुझे इतनी बड़ी शांति मिली, नेचुरल मुझे नहीं पता क्यों मिली, और मुझे कल जाना था, मैंने अपनी ट्रेन की कैंसिल कराई है टिकट और परसों मेरे घर जाने का दिल करा। मुझे यहाँ इतना सुकून इतनी शांति मिली तो मेरा और दिल करा कि मैं यहाँ से और कुछ शिक्षा लेके जाऊं, क्योंकि इंसान सारी उम्र कुछ ना कुछ सीखता है। जो सीखने की चेष्टा रखेगा वो कभी कभी जिंदगी में हो सकता है मार ना खाए, और खा भी गया तो जल्दी से मिल जाएगा। जो ऐसी ऐसी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं वो कभी जीवन में हार नहीं मानेंगे, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा विजय दीदी का, जिसने राजकुमार जी के माध्यम से मुझे यहाँ इनवाइट किया, और हमारे रेलवे अखाड़ा से जो बच्चे तैयार होते हैं वो सब दीदी से आशीर्वाद लेके जाते हैं, और दीदी ने हमें यहाँ बुलाने के लिए निमंत्रण दिया, तो मैं उसका दिल से आभारी रहूंगा और हमेशा आपके जीवन में याद रखूंगा। अभी क्योंकि सब स्पोर्ट्स को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं और मेरे से भी बेहतर जानते होंगे, हमारे सीनियर कोचेज बैठे हैं ओम प्रकाश दहिया जी, भगवान सिंह जी, राजकुमार जी, बहुत और भी सीनियर्स होंगे कोचेज बहुत सारे जिन्होंने इंडिया के साथ भी काम किया, और ओम प्रकाश को सन करीबन 250 से भी ज्यादा ही लड़के इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचाए हैं, वो भी बैठे हैं यहाँ पे। तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं, और जैसे मैंने क्वेश्चन किया स्पोर्ट्समैन के साथ जितने कोचेज जुड़े हैं, किसी भी लेवल का स्पोर्ट्समैन हो उसके साथ कोच का वही रोल रहता है जो एक नर्सरी के बच्चे के साथ रहता है या एक ओलंपियन के साथ रहता है। कोच का कोचिंग देने का तरीका चेंज हो जाता है, लेकिन कोच का जो ध्यान है उसको कोचिंग देने का, उसको तरीका है, वो लगभग लगभग सेम होता है। सेम मोटिवेशन समझाता है उसको, क्योंकि उसने अपने स्कूल लेवल का कैडेट लेवल का कंपटीशन लड़ना है और किसी ने वो ओलंपिक की बाउट मेडल के लिए लड़नी है। तो बड़ा तभी मैंने क्वेश्चन किया था कि क्या कोच के लिए भी, मैं समझता हूं सबसे पहले कोच को मजबूत होना पड़ेगा प्लेयर से पहले, तभी अपने प्लेयर को वो इतना मजबूत बना सकता है। खुद ही इतना मजबूत नहीं है वो दिमाग से प्लेटफॉर्म पे, ये मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं, तो फिर वो परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। और सब जैसे तो बहुत सारे लोग जानते हैं 63 साल का हुआ हूं मैं, 50 साल मेरे स्पोर्ट्स में गए हैं, तो जहां तक मैं प्लेयर रहा, ओलंपिक खेला और खिलाए प्लेयर खिलाए हैं, तो मैंने खेल के भी देखा और खिला के भी देखा। दिनेश जी ने सारी बातें बताई, सब कुछ बताया, फिजिकल फिटनेस, इंजरी के बारे में, स्पोर्ट्स मेडिसिन के बारे में, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के बारे में, डॉप के बारे में, सब कुछ। कोई मेरे ख्याल में कोई सिलेबस बाकी बचा नहीं। और सबका केंद्र है राजयोग। आप जिस तरीके से ध्यान एक जगह करते, एकाग्रत करके उस पर काम करोगे, अपने प्लेयर से उसी तरीके से कराओगे, जैसे कोच साहब कह रहे थे मैं बाइक से गिर गया लेकिन फिर भी अपने सेंटर पे गया, तो ये बहुत बड़ी बातें हैं, बहुत बड़ी बातें हैं। तो हम कोच साहब आपसे भी कुछ सीख कर और जाएंगे और बच्चों को बताएंगे, करीबन 70 लड़के हैं मेरे पास, उनको भी हम सिखाते हैं। तो मैं छोटा सा उदाहरण बताऊं, जैसे आपने दुष्ट का एग्जाम्पल दिया था, साक्षी मलिक की 4 घंटे के बाद आउट होनी थी ब्रॉन्ज मेडल की, और हम अपने जो हिंदुस्तान का एरिना है वार्म अप एरिना डिवाइड कर देते हैं, वहां थोड़ा वो उस कंट्री का वो पीछे जाके वार्म अप एरिया सबका कॉमन होता है, हम वहां बैठे थे। तो वो बच्ची खाना नहीं खा रही थी और जबकि 3 बाउट उसकी ऑलरेडी हो चुकी थी, तो मैंने कहा बेटा खाना खाओ। तो उन्होंने कहा कि सर हैवी हो जाएगा, शाम को 6 बजे कुश्ती है, मतलब तो फिक्स टाइम है 6 बजे बाउट आनी तो आनी है, 6:10 पे आनी तो आनी है। मैं कहा अभी क्या टाइम हुआ है, वो बोली जी 1:10:15 कुछ ऐसा हुआ है। मैं कहा अच्छा, आप जब कोचिंग लेते हो कैंप के अंदर हमारे, क्या लंच नहीं करते आप? जिस दिन लंच नहीं करते शाम की कैसी प्रैक्टिस होती है? बोला जी फिर तो बहुत कम होती है। मगर बेटा आप खाना खाओ, अब थोड़ा जो स्पोर्ट्स उसके बच्चे के साथ जुड़ा है उसको पता भी होता है इसकी क्या च्वाइस है। तो मैंने उसके हिसाब से कुछ कलेक्ट करके उसको दिया और उसने खाया, फिर बैठ के मगर थोड़ी देर आराम करो, उसने आराम किया। मगर बेटा मैंने जानबूझ गई दुष्ट वाली बात बोली, मैं बेटा किसके साथ कुश्ती है तेरी? इतने बुलेट फार्म पे बोला सर आपको नहीं पता, मुझे ध्यान तो आ रहा है पर लेकिन मुझे एक्चुअल ध्यान नहीं किसके साथ कुश्ती है। कजाक की लड़की बड़ी अच्छी लड़की थी, सर वो जो थ्रो मारती है वो, उसका नाम उसने लिया, मैंने कभी ऐसा देखा नहीं उसको थ्रो मारते हुए। और थ्रो की तो एक बात है बेटा, वो घुटने से नीचे से पकड़ लो कहां से थ्रो मार देगी वो, मैंने कभी देखा नहीं, हालांकि सब पता था मुझे। सर ये बात है? मैं कहा बिल्कुल बेटा यही तो बात है, आपका इतना अच्छा अटैक है, लेग अटैक इतना जबरदस्त है, पैर को यहां ऊपर की बजाय थोड़ा घुटने से पकड़ लियो, बंद गया आदमी कहां जाएगा? ऐको सब कबड्डी का प्लेयर को यहां से कैच कर ले कहां जाएगा? बेटा यही तो बात है, मुझे नहीं पता वो क्या करती है, लेकिन सर वो बच्ची इतनी रिलैक्स हो गई, इतनी रिलैक्स हो गई, तो कुछ ये जब उसने महसूस मुझे नहीं होने दिया तो, और मुझे भी नहीं पता मेरी बात से इतनी सहमत हो गई है, जब वो कुश्ती लड़के आई और वो लड़की मीडिया के सामने ये बात बता रही, सर ने मुझे ये बिल्कुल खाली कर दिया दिमाग से, मैं बड़ा स्ट्रेस लेकर बैठी हुई थी, ना खाना खा रही थी मैं, और ये था ये भी करती है वो भी करती है, ये टेक्निक वहां लगाती है ये लगाती है। तो जो मेरे जूनियर कोचेज हैं और जो प्लेयर्स हैं आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि दिमागी तौर से कैसे शांत स्वभाव रोक के ये सारी चीजें कब संभव है, जब आप मेडिटेशन से जुड़ोगे, आप उसके बारे में पढ़ोगे, और सबसे बड़ी बात है का आपका मन सिखाने के अंदर होना चाहिए, चाहे वो छोटा बच्चा कैडिट का हो, प्राइमरी स्कूल का हो, चाहे ओलंपिक का पदक विजेता हो, तो आपने इस तरीके की कोचिंग को आपने सेट करना पड़ेगा और हमारा देश बहुत अच्छा तरक्की करेगा। तो बाकी मेरा एक्सपीरियंस तो आपने सुना ही है, मैं क्या बताऊं, और सर ने सपोर्ट्स के बारे में एक ही बात बहुत अच्छे अच्छे तरीके से सुनी है सर की। देखो मन, हमारा मन और दिमाग एक जगह नहीं होगा तो हमें पता ही नहीं कहां अटैक करना है, हमारी बॉडी कैसे रिस्क करेगी। फिजिकल स्ट्रांग हो जाएंगे अब, जिम कर लेंगे और पैरों की मसल भी मजबूत कर लेंगे, हाथों की मसल्स, बाइसेप्स ट्राइसेप्स काफ मसल्स ये सब स्ट्रांग कर लेंगे, लेकिन माइंड हमारा स्ट्रांग नहीं रहा, मार खा जाएंगे हम। हमें पता ही नहीं इसके ऊपर क्या करना है, हमने डर के खड़े हो जाएंगे। वो जो पावर है हमारी, एनर्जी है, वो हमारे अंदर सटोर रही रहेगी। आगे इंप्लीमेंट नहीं हो पाए तो हम स्पोर्ट्स में नहीं कामयाब हो सकते। जब हम साइकोलॉजिकल तैयार नहीं होंगे, हमारे टेक्निक भी डेवलप नहीं होगी। एक चीज टेक्निक है, उसको बार बार लगा के देख लिया, चल डेवलप होगी थोड़ी बहुत। टेक्निक के साथ टैक्टिक्स को कैसे डेवलप करेंगे? टैक्टिक्स तो यहां से चलेगी, और यहां से हम स्ट्रांग नहीं है तो टैक्टिक्स हो ही नहीं सकती। तो बहुत बड़ा रोल है इसका, राजयोग का, हमारे स्पोर्ट्स के अंदर, मेडिटेशन का। पर और अच्छे से यहां से सीख के, और अपने ग्राउंड में जो हमारे पास बच्चियां हैं, 70-80 बच्चियां मेरे पास ट्रेनिंग करती हैं, और इसके ऊपर काम करेंगे। और जहां जहां आप लोगों की मदद होगी, आपसे इनवाइट करके हम अपने गेम के अंदर, अपने बच्चों के अंदर सुधार करने की कोशिश करेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। हम बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं भाई जी का, जिन्होंने हमको एग्जाम्पल के थ्रू बताया कि कैसे हम जब भी कुछ करने जाते हैं तो उनको सबसे पहले अपने आप को हल्का करना है। तो उसके लिए हमको माइंडली बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए हमको पॉजिटिव कुछ अफर्मेशंस चाहिए, और हमको अपनी शक्तियां हमारे अंदर जो है उसको हमको अपने अंदर खोजना है। हमको अपने अंदर से अपने आप से बातें करनी है। अफर्मेशंस हम मेडिटेशन में कैसे करते हैं, आप वैसे सुबह अभ्यास कर रहे होंगे, जो सुबह 7 से 8 का हमारा सेशन होता है, और आप अभी भी 7 बजे आपका वो सेशन रहेगा, तो इसलिए कोई भी जाए नहीं, आप सभी यहाँ बैठे रहिएगा। बहुत अच्छा। आपको अफर्मेशन हमको मन को किस प्रकार से देनी है, क्योंकि मन को बैलेंस करने के लिए मन को अफर्मेशन चाहिए। वो अफर्मेशन क्या है वो आपको भी बताएंगे, वो 7 से 8 का सेशन रहेगा। और ये राजयोग मेडिटेशन कोई भी कर सकता है। हमारे सामने, हमारे बीच में हमारी दीदी भी विराजमान है, विजय दीदी, जो कि आप बचपन से ही, क्योंकि इस राजयोग को, मेडिटेशन को करने के लिए कोई आयु की जरूरत नहीं है, इसको कोई भी कर सकता है। तो हमारे बीच में विजय दीदी हैं, जो कि बचपन से इस राजयोग मेडिटेशन की प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, और आपने भी बहुत सारी सफलताओं को प्राप्त किया है अपने लौकिक और इस ज्ञान के आध्यात्मिक जीवन में भी। और आप बचपन से इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, और 35 वर्षों से आप समर्पित रूप से, हमारा जो दिल्ली करोल बाग सेंटर है, दिल्ली जोन का हेडक्वार्टर है, वहां पर आप सेवारत हैं। अपनी सेवाओं में रहते हुए भी हम मेडिटेशन करते हैं, और आप स्पोर्ट्स विंग जो हमारा ये है RERF के अंदर, आप उसके दिल्ली जोन के कोऑर्डिनेटर भी हैं, साथ साथ आप बहुत सारी सेवाओं में भी एक्टिव रहते हैं। तो अभी हम दीदी से अनुरोध करेंगे, वो आप सबको ब्लेसिंग्स, अपनी शुभ भावनाएं देंगे आपको, और आप अपने इस क्षेत्र में आगे बढ़े, आपका मन हमेशा बैलेंस में रहे। तो उसके लिए अभी शुभ भावनाएं हम लेंगे विजय दीदी से। ऑप्शन ओम शांति।
निस्संदेह ये जो हमारी कॉन्फ्रेंस चल रही है, एम्पावरिंग द स्पोर्ट्स पर्सन, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सभी यहाँ तो बहुत एम्पावर्ड हो ही गए हैं, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक हम अपनी यहाँ की भाषा में कहते हैं कि जब कोई यहाँ आते हैं माउंट आबू में, चाहे वो न्यू कमर्स हों या यहाँ आने वाले रेगुलर स्टूडेंट्स हों, वो या तो क्लास या फिर ग्लास उठा। आपने सुबह ब्रेकफास्ट लिया, उसके पश्चात क्लास में आ गए, फिर आप डाइनिंग में गए, भोजन किया, ग्लास उठाया, और उसके पश्चात फिर आप शाम को क्लास में आ गए। अभी आप शाम से यहाँ ही बैठे हैं, यहाँ से जब जाएंगे तो सभी कहाँ जाएंगे? डाइनिंग में जाएंगे, फिर ग्लास उठाएंगे। तो क्लास और ग्लास, क्लास और ग्लास, इतना एम्पावर्ड हो जाते हैं, और सिर्फ क्लास ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ आप देखते हैं जो यहाँ का वायुमंडल है, जो यहाँ के वाइब्रेशंस हैं, जो यहाँ के प्रकंपन हैं, सुबह उठते ही जो यहाँ मेडिटेशन का अभ्यास किया जाता है, उससे ना चाहते हुए भी आप स्वतः ही एम्पावर हो ही जाते हैं। परंतु क्या सिर्फ यहाँ तक? यहाँ 3 दिन आपको बहुत अच्छा लगा, लेकिन कितना ही अच्छा होगा कि अगर आप वहाँ जा कर के भी, क्योंकि यहाँ और वहाँ में बहुत फर्क हो जाएगा। यहाँ आप सारा दिन उसी एटमॉस्फेयर में हैं, सारा दिन आपको जैसा बताया कि क्लास और ग्लास ही मिलता है, लेकिन जरूरी नहीं जब आप अपने कर्म क्षेत्र पर जाएंगे तो वहाँ भी ऐसा ही आपको माहौल मिले। उसके लिए अवश्य ही आप जहाँ से भी आए हैं, जिस भी सेंटर के थ्रू आए हैं, जहाँ से भी आपका कनेक्शन हो, तो हमारा ये कहना है कि अवश्य ही आप उस सेंटर से जुड़ करके सारा दिन में केवल 1 घंटे का समय, नहीं तो आधा घंटे का समय आप अवश्य निकालें अपनी मेंटल फिटनेस के लिए। क्योंकि जैसे अभी आपको दिनेश भाई जी सुना रहे थे कि हम बैलेंस रखें, जब फिजिकल फिटनेस की बात आई तो आपने देखा जो 3 बातें विशेष रूप से हम ध्यान पे रखते हैं फिजिकल फिटनेस के लिए, डाइट, रेस्ट और एक्सरसाइज। परंतु क्या आप जानते हैं कि अगर आपको अपने मन को भी फिट रखना है तो उसके लिए भी ये तीनों ही चीजें मस्ट है। तो मन की डाइट क्या है? कोई भी मन की डाइट क्या है? विचार। लेकिन कौन से विचार? विचार भी अगर हम कहें सुविचार, पॉजिटिव थिंकिंग, प्योर पॉजिटिव एलिवेटेड थॉट्स, बट वो आएंगे कहाँ से? क्योंकि सारा दिन हम जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं, जिन लोगों के साथ रहते हैं, जिनसे हम व्यवहार में आते हैं, आपने देखा होगा एक दूसरे के साथ नेगेटिविटी एक्सचेंज करते रहते हैं। तो इसीलिए जो मन की डाइट है, प्योर पॉजिटिव थॉट्स, एलिवेटेड थॉट्स, उसको लेने के लिए आपको जरूर अपना कनेक्शन जो ब्रह्मा कुमारी के हमारे सभी शहरों में सेवा केंद्र हैं, जो भी आपके नजदीक सेवा केंद्र हो, वहां पर जाकर के आप डेली अगर प्योर पॉजिटिव थॉट्स लेंगे तो अवश्य ही आप अपने मन को शक्तिशाली बना सकते हैं, मन को फिट रख सकते हैं। और वही शक्तिशाली विचार, वही प्योर पॉजिटिव थॉट्स जो हमारे मेडिटेशन में हमें हेल्प करते हैं, क्योंकि मन का रेस्ट है मेडिटेशन। जैसे शारीरिक रीति से आप देखें फिजिकल रेस्ट आप जब ले लेते हैं तो उसके पश्चात आप कहते हैं मैं बिल्कुल फ्रेश हो गया, ठीक इसी प्रकार से आप इन 3 दिनों में देखेंगे कि जब आप मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन करने के बाद आप खुद फील करते हैं बिल्कुल फ्रेश हो गए। तो इसीलिए जरूरी हो जाता है कि अगर हम डेली मेडिटेशन की प्रैक्टिस करें और उन मेडिटेशन की प्रैक्टिस के लिए जो हमें प्योर पॉजिटिव थॉट्स चाहिए, उन दोनों के बीच में आप देखेंगे अगर आपने डाइट बहुत अच्छी ले ली, लेकिन उसके बावजूद भी जरूरी नहीं आप रेस्ट प्रॉपर कर पाए, उसके बीच में चाहिए होती है क्या? डाइट बहुत अच्छी ली, उसके बीच में क्या चाहिए? डाइट बहुत अच्छी ली, उसके बीच में चाहिए एक्सरसाइज। उस डाइट को डाइजेस्ट करने के लिए, पहले जमाने में लोग कोई ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करते थे, हार्ड वर्क करते थे, और उस हार्ड वर्क से ही उनकी ऐसी एक्सरसाइज हो जाती थी, वो जो भी खाते थे सब कुछ डाइजेस्ट हो जाता था। आज आप सूखी रोटी भी खाते हैं लेकिन डाइजेस्ट नहीं होती, उसके लिए एक्सरसाइज करनी पड़ती है। तो ठीक ऐसे ही जो हम प्योर पॉजिटिव थॉट्स रोज लेंगे, उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना, उसको अपने जीवन में लाना, वो है उसकी एक्सरसाइज। तो जब हम डेली उन विचारों को अपने जीवन में लाएंगे तो अवश्य ही हम मेडिटेशन को प्रॉपर कर पाएंगे और अपने मन को फिट रख पाएंगे। और जब मन फिट है तो तन स्वतः ही फिट होता जाएगा, क्योंकि मन का एक एक विचार हमारी बॉडी के 75 ट्रिलियन सेल पर इफेक्ट डालता है। अगर एक विचार भी आपका नेगेटिव आ जाता है, जिस प्रकार से सुबह भी बात कर रहे थे, अगर एक विचार ईर्ष्या का है, क्रोध का है, नफरत का है, बदले की भावना का है, जिसको हम आध्यात्मिक भाषा में कहते हैं जहरीले विचार, टॉक्सिक थॉट्स, अगर ये टॉक्सिक थॉट्स हम ले लेते हैं तो आप सोच सकते हैं, जिस प्रकार से बताया, एक एक विचार हमारे बॉडी के सेल्स पर इफेक्ट डालता है, तो कितने हमारे बॉडी के अंदर जहरीले केमिकल्स क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं, जिससे हमारे तन पर इफेक्ट आता है और वही तन बीमारियों का कारण बन जाता है। तो इसीलिए हम ये चाहेंगे, अगर आप सचमुच चाहते हैं आप अपने मन को भी और तन को भी स्वस्थ रखें, तो जिस प्रकार से तन के ऊपर आप अटेंशन देते हैं, उसकी डाइट, रेस्ट और एक्सरसाइज करते हैं, ठीक इसी प्रकार से अपने मन की भी डाइट का, रेस्ट का और प्रॉपर एक्सरसाइज का, अर्थात मन के अंदर जो विचार दिए जाएं और वो विचार भी रोज लेने होते हैं। जिस प्रकार से भोजन आप देखेंगे, आप रोज लेते हैं, ऐसा नहीं है कि आप सोचें चलो अभी 3 दिन तो हमने बहुत अच्छी तरह भोजन कर लिया, अभी उसके बाद 1 सप्ताह हम छुट्टी कर सकते हैं, है कोई ऐसे? डाइट रोज चाहिए, ठीक इसी प्रकार से विचार भी अच्छे रोज चाहिए, और उन विचारों का सोर्स है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जहां से आपको डेली प्योर पॉजिटिव थॉट्स मिलते हैं। उन विचारों को लेकर के अगर आप अपने जीवन के अंदर अपनाएंगे और मेडिटेशन करेंगे तो अवश्य ही आप मन से भी और तन से भी फिट रह सकेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति शांति शांति।
ओम शांति। तो कौन कौन तैयार है रोज डाइट लेने के लिए, मन की डाइट लेने के लिए? कौन कौन जाएंगे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी आश्रम पर अपने नजदीक में? हाँ, आप जरूर जाइएगा, आप देखिएगा बहुत आपका मन शक्तिशाली बनेगा। आपको रोज क्या डाइट लेने, क्या संकल्प करने हैं, क्योंकि आज हमें यही समझ नहीं आता हमको क्या संकल्प करने, तो वो आपको जो संकल्प है, जो विचार है, वो आपको वहां पर जाकर के आपको मिलेगा। तो हम दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो उन्होंने हमको इतनी सारी शुभकामनाएं दी कि हम अपने को कैसे शक्तिशाली बनाएं। तो आप उनकी शुभ भावना है कि आप भी अपने आप को शक्तिशाली बनाएं, उसके लिए आप ब्रह्मा कुमारी आश्रम पर जरूर जाइएगा। ओम शांति। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम दीदी का। अभी हम इस सत्र को समाप्त करते हैं, उससे पहले हम अभी करें, हाँ, तो अभी मैं दीदी से अनुरोध करती हूँ, हमारे बीच में कुलदीप सिंह मलिक जी हैं, उनको भी दीदी अभी उनको सम्मानित करेंगे विजय दीदी। और मैं संजय गुहा जी से भी अनुरोध करती हूँ, जो कि बॉक्सिंग कोच हैं कोलकाता से, आप भी स्टेज पर आइए, आपको भी सम्मानित किया जाएगा पट्टे के द्वारा, और आप अपनी ताली बजाते रहिए सभी सम्मान करने के साथ में। अभी हमारा आगे का सत्र चलेगा जो कि मेडिटेशन सत्र है, आप सभी बैठ